वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से फिलिप्पियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 4 अध्याय के कुछ पदों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया के साथ किस प्रकार अपने प्रेम को बांटता है। तो आइए इससे पहले कि हम इस अध्ययन में जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीत और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का, जो सामर्थ्य वचन है, अध्ययन कर सके। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारियों के कारण से, अपनी नौकरी के कारण से, वैवाहिक जीवन के कारण से। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उनके जीवन में बोले और बातचीत करें, आज का वचन उनके जीवन के लिए लाभ का कारण बन सके। इस प्रकार से हम इसे प्रत्येक को आप आशीषित करें। इस समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पौलुस आनंद के बारे में हमें बताना चाहता है, सामर्थ के बारे में बताना चाहता है। जैसे हमने देखा है कि आनंद सामर्थ का स्रोत है और प्रार्थना सामर्थ का भेद है, और अब हम देखेंगे कि मसीह का ध्यान करना सामर्थ की वेदी अर्थात पवित्र स्थान है। आइए आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 4:8। फिलिपियों की पत्री 4:8 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ध्यान दीजिए, इसलिए हे भाइयों, अध्याय 3 के आरंभ में वह कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों। यहां पर हम देखते हैं हे भाइयों और हे मेरे भाइयों, जबकि वह अभी पत्र के मध्य में ही था। अब वह लगभग पत्र के अंत में है और अपना अंतिम प्रबोधन कर रहा है। यह प्रभु यीशु की अति संक्षिप्त जीवनी कहलाती है। वही सत्य है, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। पौलुस कहता है जो बातें सत्य हैं, जी हां वह सत्य है। जो जो बातें आदरणीय हैं, प्रभु यीशु आदरणीय है। यहां आदरणीय से अभिप्राय है सत्य निष्ठा। जो जो बातें उचित हैं, यीशु उचित अर्थात धर्मी है, पवित्र। इस पृथ्वी पर यदि कोई पवित्र था तो वह केवल प्रभु यीशु था। उसने एक प्रश्न पूछा था, तुम में से कौन मुझ पर दोष लगाता है, और तब कोई भी खड़ा न हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:30 में उसने कहा, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। शैतान हमेशा ऐसी कोई बात मुझ में खोजता है कि मुझे अपने शिकंजे में कस ले। आपके बारे में क्या है? परंतु यीशु की एक विशेषता थी कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इब्रानियों की पत्री 7:26 में लिखा है कि वह पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग था। सुहावनी अर्थात उदार, कृपालु, प्रभु यीशु सद्गुण और प्रशंसा की बातें। सद्गुण का अर्थ है बल और साहस। वह एक साहसी सच्चा पुरुषार्थ था अर्थात पुरुषार्थ रखता था। उसने हमारी मानवता अपने ऊपर ले ली। प्रशंसा की बातें, आज आप उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं एक गंदे संसार में रहते हैं। गंदे कहने का तात्पर्य यहां पर कूड़ा करकट नहीं है, लेकिन सामाजिक भ्रष्टाचार के अंदर हम जीवन जीते हैं। आप गंदे हुए बिना सड़क पर नहीं चल सकते। आपका मन, आपकी आंखें गंदी होती है। क्या आप कभी इस गंदगी से ऊब जाते हैं? सिनेमा और टीवी के पास अब विचारों का खजाना समाप्त हो गया है। अब वे क्या करें, अब कहां वे जाएं? अब वहां वृद्धि की बातों की अपेक्षा व्यर्थ की बातें भरी हैं। किसी ने उसे विशाल कूड़ादान भी कहा है, परंतु करोड़ों लोग उसमें आंखें गड़ाए रहते हैं, टीवी के सामने से उठना भी नहीं चाहते हैं। कई घरों में इसके प्रति लड़ाइयां भी होती हैं, जैसे किसी सूखे रेगिस्तान को निहार रहे हों। उनका मन गंदा, अश्लीलता और उपद्रव से भरा रहता है। मेरे प्रियो, यदि एक विश्वासी संसार की गंदगी, अश्लीलता और अनुचित बातों में लगा रहे तो उसके जीवन में सामर्थ्य नहीं होगा। वह दुर्बल हो जाएगा, आत्मिक रीति से कमजोर हो जाएगा। हम में अनेक विश्वासी दुर्बल हैं, क्योंकि वे इस संसार की अनर्थ बातों से अपना मन, मस्तिष्क और पेट भरते हैं, और फिर वे सोचते हैं कि हमारे जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं है, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य क्यों नहीं देता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमें एक वेदी, पवित्र स्थान की आवश्यकता है। हमें ऐसी बात पर ध्यान करना है कि हमारा मन स्वच्छ हो जाए। विचार करने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न हैं। आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं? आप मसीह के वचन में कितना ध्यान लगाते हैं, कितना समय बिताते हैं? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है और उसमें हम प्रभु की महिमा देखते हैं। जीवित प्रभु यीशु को देखने का एकमात्र स्थान परमेश्वर का वचन है। जब आप उसे देखते हैं तो वहां स्वतंत्रता, स्वाधीनता और विकास है जो प्रभु आपको देता है। आप अन्य और किसी मार्ग से परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। जैसा कि आज बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वे परमेश्वर की निकटता में आकर उस आनंद और शांति को प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी और तरीके से। जी नहीं, आप कभी भी परमेश्वर के वचन से हटकर शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पर समय बिताएं, क्योंकि यह आपके लिए दर्पण है जो आपको प्रतिदिन के जीवन की बातों को बताता और सिखाता है। विश्वासियों के जीवन का प्रभाव कैसा बचकाना और कैसा ओछा आज हम देखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वासी धर्म की किसी भी शिक्षा के प्रभाव में बह जाते हैं। वे सत्य और त्रुटि को पहचान ही नहीं पाते। एक विचार जिस पर मैंने मन में विचार किया है वह है परमेश्वर के वचन का अज्ञान। कई बार लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन अज्ञानता में हो करके पार हो जाते हैं। अपने जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए हमें प्रभु यीशु के जीवन पर ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन में उस पर ध्यान करना चाहिए, ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। मेरे प्रियो, अधिकांश समय तो हम आराधना में मनोरंजन के लिए आते हैं। किसी ने उचित ही कहा है कि विश्वासी अधिकतर कपड़े देखने या आंखें बंद करने के लिए आते हैं। वे 1 घंटा मूर्छित अवस्था में बैठे रहते हैं केवल इसलिए कि उन्हें पवित्र और धर्मी होने की अनुमति हो। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य बना सकता है। यदि आपका शरीर दुर्बल हो तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है। आपको शारीरिक शक्ति के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन आपका आत्मिक पौष्टिक भोजन है। यदि आप इस आत्मिक पौष्टिक भोजन को नहीं लेते हैं तो निश्चय ही आप आत्मिक रूप में कमजोर होंगे। आत्मिक विकास का एकमात्र साधन है आत्मिक पौष्टिक भोजन, परमेश्वर के वचन का मनन करना। परमेश्वर का वचन ही है जो प्रभु यीशु को प्रकट करता है। मुझे विश्वास है कि वह धर्मशास्त्र के प्रत्येक पृष्ठ पर है। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें हो तो आप इसे अवश्य ही देखेंगे। हमें उसे देखने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु की वास्तविकता को अपनाना है। यह तब ही संभव है जब हम उघाड़े चेहरे प्रभु की महिमा को देखेंगे। मेरे विचार में मसीह के आगमन पर एकमात्र लज्जा का कारण होगा धर्मशास्त्र का अज्ञान, जब हम उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे। जी हाँ, मेरे विचार में यह है कि हम में से अधिकांश विश्वासियों से कहेगा, मैंने तुम सबको आवश्यक जानकारियां धर्मशास्त्र में दी हैं, तुमने मेरे बातों को क्यों नहीं माना, मेरी बातें क्यों नहीं सुनी और मेरी ओर कान क्यों नहीं लगाया। हम अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि वे माता पिता की बात नहीं मानते। परमेश्वर की संतान की भी यही समस्या है कि वह अपने स्वर्गीय पिता की बात नहीं मानते। मसीह पर ध्यान लगाना सामर्थ की वेदी है। मेरे मित्रों, हमें इस संसार के गोरख धंधे को और अश्लीलता को त्याग आत्मा की वेदी परमेश्वर के वचन में जाना है, जहां हम उस पर ध्यान लगाएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आज हमारे मसीही परिवार बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि हम परमेश्वर की वेदी के पास नहीं आते हैं। हम संसार में खो गए हैं और प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसकी ओर आएं, उसके वचन को सुने और उसकी आराधना करें। हम फिलिपियों की पत्री 4:9 में पढ़ते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे मित्रों, यदि हम पौलुस जैसे कहे तो वह एक बड़े साहस की बात होगी। मैं जो करता हूं वह करो, मैं अपने छोटे बेटे को नहीं चाहता कि वह मुझे देखा देखी करे, मुझे अपना उदाहरण बनाए। परंतु पौलुस विश्वासियों के लिए अपना जीवन एक आदर्श बनाए हुए था। पौलुस सामर्थ के उस पवित्र स्थान में था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र और परिधि बनाया हुआ था। मसीह में सामर्थ की संतुष्टि। हम यदि मसीह को अपना केंद्र बिंदु बनाते हैं तो हम उसके आधार पर अपना जीवन जीते हैं, और निश्चय ही हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते परमेश्वर के निकटता में आ जाते हैं। फिलिपियों की पत्री 4:10 में हम आगे पढ़ते हैं, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। मैंने आरंभ में कहा था कि फिलिपियों की कलीसिया को लिखा यह पत्र धन्यवाद का पत्र है। इससे पहले कि पौलुस धन्यवाद कहे, वह मसीही अनुभव की बात को करता है। वह मसीही अनुभव का वर्णन संपूर्ण पत्र में ही कर रहा है। अब वह उन्हें उनकी भेंट के लिए धन्यवाद कहता है। फिलिपी की कलीसिया 2 वर्ष तक पौलुस के संपर्क से बाहर थी। यरूशलेम में बंदी बनाए जाने का समाचार तो उन्हें मिला था, परंतु उसके बाद पौलुस 2 वर्ष कहाँ रहा, उन्हें उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें जब पौलुस का समाचार मिला तब वह रोम के बंदी गृह में था। उन्होंने उससे संपर्क करने और उनके लिए भेंट ना भेजने के लिए क्षमा याचना की। पौलुस की बड़ी उदारता थी और बड़ी उदारता से उन्हें उसने क्षमा करते हुए कहा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। दूसरे शब्दों में, मेरे साथ तुम्हारा संपर्क टूट जाने के कारण तुम्हें मेरी सहायता करने का अवसर नहीं मिला। पौलुस कैसा उदार दिल का व्यक्ति था। कई बार जब हमारे प्रिय लोग हमसे अलग हो जाते हैं, यद्यपि को हमसे मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं, और जब हमारी मुलाकात होती है तो हम उनसे कहने लगते हैं कि आपने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। लेकिन यहाँ पर पौलुस ऐसा नहीं कहता है, उस बात को स्मरण करता है कि 2 वर्ष उनके साथ में न रहने के बाद भी लोग उसे ढूंढ रहे थे। फिलिपी की कलीसिया पौलुस से प्रेम करती थी। हम फिलिपियों की पत्री 4:11 में पढ़ते हैं, लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि उसने उनसे अपील नहीं की थी और न ही खतरे का संकेत दिया था। पौलुस अपनी परिस्थिति में संतोष करना जानता था, चाहे वह बंदी गृह में हो चाहे बाहर। हम में से अधिकांश जन सोचते हैं, यदि सब ठीक चल रहा हो और हम सही स्थान में हो तब ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम अपने संतोष के लिए अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। मैंने प्रभु से मांगा है कि वह मुझे संतोष प्रदान करे। मैंने प्रभु से मांगा है कि वह मुझे रिकॉर्डिंग के समय भी वैसा ही संतोष प्रदान करे जैसा मुझे यात्रा करते समय प्रदान करता है। जब मैं वहां के मनोहर दृश्य का आनंद लेता हूं, हमारी परिस्थितियां हमारे संतोष में महान योगदान प्रदान करती हैं। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं और हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव हमेशा और अधिक प्राप्त करने की होती है, और यही कारण है कि मनुष्य दिन रात कुड़ते हुए अपने जीवन को जीता है, जबकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक उन्हें दिया है। परंतु पौलुस ने संतोष करना सीख लिया था, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के संतोष को करना सीख लें, और यह सब हम सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही सीख सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी सहानुभूति का आभारी हूं, परंतु मैं दरिद्रता में रहना जानता हूं और बहुतायत में भी अर्थात अधिकता में भी रहना जानता हूं। ऐसा समय भी था जब पौलुस के पास कुछ भी नहीं था, परंतु उसे पूर्ण संतोष था। परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दिया भी था, उस समय उसने बहुतायत का जीवन भी जिया था। मेरे प्रियो, प्रभु की सेवकाई करते हुए मेरे जीवन में काफी समय बीत गए हैं। मैंने अपनी पत्नी से भी कहा है, हमारी आमदनी कम हो जाएगी और हमारा जीवन स्तर भी गिरेगा। मैं जानता था कि वह हमारे लिए कठिन होगा। पौलुस जानता था कि बढ़ती और घटती में कैसे जीवन जीना है, परंतु हम इसमें निपुण नहीं है। मेरे विचार में प्रभु जानता था कि पौलुस किस प्रकार का जीवन जी सकता है, अतः कुछ उदार मित्रों की सहायता से हमारा जीवन स्तर नहीं गिरेगा, क्योंकि वह हमारे लिए हर एक बातों का प्रबंध करता है। यदि हम अपनी जीवन स्तर को गिराने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु यह नहीं चाहेगा कि आप गरीबी में जीवन जिए, वह चाहेगा कि आप उसके निकटता में जीवन जिए, तो निश्चय ही वह आपको आपकी जरूरतें प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए क्या ही धन्यवाद का विषय होगा कि हमारे अंदर में संतुष्टि पाई जाए। मेल ट्राटर एक शराबी थे और प्रभु को ग्रहण करने के बाद उन्होंने मध्य व्यवसायियों के लिए सेवा संस्थान आरंभ किया। उन्होंने एक होटल के मालिक को, जो शराबी था, प्रभु की शरण में लाया। उसने मेल ट्राटर से कहा कि उनकी सभा में जो भी प्रचारक आएगा उसे वह अपने होटल में ठहराएंगे और निर्मल उसकी सेवा करेंगे। उनकी वार्षिक सभाओं में डॉक्टर हेरी आयरन साइट प्रति वर्ष प्रचार करने के लिए जाते थे। जब वह वहां पहुंचे तब उन्हें उस होटल के अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचाया गया। डॉक्टर आयरन साइट ऐसे विभवशाली होटल कक्ष में कभी भी नहीं रहे थे। उन्होंने मेल ट्राटर को फोन करके कहा, मेल, आपको मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसी सुख सुविधा की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे बस एक कमरा और एक बिस्तर की आवश्यकता है तथा एक टेबल और एक बत्ती की भी आवश्यकता है ताकि मैं अध्ययन कर सकूं। मेल ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनका वहां ठहरना ना तो उनके लिए और न ही संस्था के लिए आर्थिक बोझ है, वह निर्मोल व्यवस्था है जिसके लिए उन्हें और न ही संस्था को कुछ पेमेंट करना है। मेल ने कहा, हेरी, पौलुस कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, क्या आप इस सप्ताह बढ़ना चाहेंगे या इसके बारे में जानना चाहेंगे? हम में से कई लोग इस प्रकार की सुविधा को देख करके अचंभित होते हैं, लेकिन आप जानें कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे मित्रों, अब हम ऐसे पद को देखेंगे जिसका संदर्भ प्रायः कई बार दिया जाता है, परंतु मेरे विचार में इसका संदर्भ परिस्थिति विशेष में ही दिया जाना चाहिए। यह पद जीवन में व्यवहारिक है, इस पद को जीवन में उपयोगी भी बनाना है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस पद की गंभीरता को समझ पाएंगे, और मैं आपको इसके विषय में बताना चाहता हूं। लेकिन आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में आपसे फिर मिलेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य अपने जीवन में आत्मिक लाभ ग्रहण करेंगे। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।